awakening to a new way of living.
ओम शांति। इस सुंदर सुनहरी शाम में आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस के वैलिडिक्टरी सेशन में आप सबका शत शत शुभ स्वागत है जिसका विषय है आत्मनिर्भरता के लिए धार्मिक नेताओं के योगदान। आज के विषय पर अपना अनुभवी युक्त वक्तव्य रखने हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से आदरणीय राजयोगिनी गोदावरी दीदी। 60 वर्ष पहले आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने संस्थान के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और संस्थान की प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती माँ की अलौकिक पालना प्राप्त करते हुए स्वयं को 5 दशकों से प्रभु अर्पण कर दिया। दीदी जी को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है, उसमें विशेष है थाने भूषण अवार्ड, आदर्श कार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय ज्योत पुरस्कार। विश्व की सबसे बड़ी राखी का रिकॉर्ड आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। प्रजापिता ब्रह्मा एक अद्भुत जीवन रहस्य इस किताब को विश्व में सबसे बड़ी किताब के रूप में आपने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अब अपनी प्रेरणाओं से भरपूर करेंगी राजयोगिनी गोदावरी दीदी जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा निराकार शिव की सर्व संतान, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी आध्यात्मिक प्रेमी भाई बहने एवं संत समागम में आए हुए सभी हमारे संत महान सभी का हार्दिक इस मंच पर स्वागत है आज का विषय हमें यही याद दिलाता है कि वर्तमान समय जो परिस्थितियां चल रही है उसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें और किस तरह से हम उनको मानव जीवन से दूर कर सके, क्योंकि ये परिस्थितियों के कारण हर मानव का मन बहुत ही भयभीत हो चुका है, बहुत ही दुखी हो चुका है। अशांति, रोग, शोक इत्यादि के कारण हर घर क्या, हर परिवार क्या, समाज क्या, देश क्या, पूरा विश्व इस महामारी में जैसे कि फंसा पड़ा है। हमें ये ख्याल आता है कि हमारा भारत देश अध्यात्म प्रधान देश है और हमेशा एकता के सूत्र में परोया हुआ देश है, जहाँ शांति, सुख, खुशी, आनंद। एक समय था, याद आता है कि संसार के अंदर कोई भी प्रकार का न कष्ट था, न रोग था, न शोक था। सभी पारस्परिक कितना मिलकर के चलते थे। आज याद आ रहा है वो भारत की संस्कृति, वो भारत एकता के सूत्र में परोया हुआ था। आज यही आपस में जब देख रहे हैं कि बैर, ईर्ष्या, आपस में लड़ाई झगड़े की भावनाएं, नकारात्मक सोच ने सभी मनुष्य आत्माओं को ऐसा घेर लिया है जो वो कोई भी व्यक्ति अपने आपको अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता है। आज जो संत समागम यहाँ मिला हुआ है तो सभी से यही अनुरोध है कि हम पूरे विश्व के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए ऐसा कोई एकता का सूत्र या हमारा जो हम सभी अभी
आत्मनिर्भर
कैसे बने और किस तरह से हमारी भारतीय आज की संस्कृति में हम सभी आत्मनिर्भर ही थे, हम सभी स्वावलंबी थे, हम किसी के ऊपर हम जीते नहीं थे, हम अपने पैर पर ही खड़े थे। परंतु वर्तमान समय नकारात्मक सोच ने सभी को बहुत ही अच्छी बातों से या अपने मनसा के शुद्ध स्वच्छ पवित्र विचारों से दूर कर दिया है। परंतु हम देख रहे हैं कि बदलते हुए वेश में दिनों दिन उन्नति के बदले अवनति की ओर दुनिया जा रही है, दुनिया के लोग भी जा रहे हैं और मन के अंदर कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। परंतु हमारा कहने का भाव यही है कि अभी थोड़ा 2 मिनट अपने आप के लिए भी निकालो। वर्तमान समय तो लॉकडाउन के कारण हरेक अपने घरों में ही रहते हैं और कई कई लोग तो ये भी समझते हैं कि हमको ये जो समय मिला है तो जरूर हम अपने लिए तो कुछ करें। परंतु कईयों को ये भी सोच चलता है कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, कभी खुलेगा। परंतु ये सोचना चाहिए कि जो आई हुई बीमारी है ऐसी भयंकर बीमारी है कि जिस कारण मनुष्य आत्माओं को उनका वायरस के कारण बहुत ही पूरा परिवार भी तंग हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय ये आपत्ति या विपत्ति एक के ऊपर नहीं है, परंतु ये पूरे देश की नहीं लेकिन विदेश की सभी जगह विश्व में पूरी जगह ये बीमारी फैली हुई है। इसके कारण हम सभी को उनसे तो संभलना ही होगा और चारों ओर देखे तो चारों दिशाओं में जैसे अग्नि कुंड बना हुआ हो, अग्नि जल रही है और चारों ही ओर देखो तो एक तरफ देखो तो वहाँ हमारी बीमारी की है, दूसरी तरफ देखो तो कुदरत का कहर भी इतना ही है, प्रकृति का प्रहार भी इतना ही है और चौथी तरफ देखो तो लड़ाई झगड़े की उच्चतम भावनाएं भी इतनी बढ़ती जा रही है। अब इन सभी को मिटाने के लिए अथवा हटाने के लिए हम सभी को मिलकर के कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिस प्रयत्न से आत्मनिर्भरता का एक संदेश, सिर्फ संदेश के रूप से नहीं लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए हम सभी को मिलकर के कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो उनकी आत्मा के अंदर में वो शक्ति प्राप्त हो, वो जागृति आवे, वो अंदर में एक शक्ति की क्रांति आवे और इंसान अपने को समझ सके कि मुझे अपने आत्मनिर्भरता में रहकर के ही अपना हर कार्य हर कर्म करना है। हमें याद आता है कि धर्म की रीति से भी हम कह सकते हैं कि वास्तव में धर्म का अर्थ यही होता है कि धर्म इति धारणा। हमारे अंदर में एक समय था बहुत मूल्यवान थे, हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है, कितनी सभ्यता थी, कितने संस्कार हमारे ऊंचे थे, महान थे। आज वही मानव आत्माएं कहां की कहां पहुंच गई है। वास्तव में हमारी ये भारत भूमि, हमारा ये देश परमात्मा के दिव्य अवतरण का देश है, देवी देवताओं का देश है और ये साधु सन्यासी संत महात्माएं योगी तपस्वी मुनि सभी यहाँ अवतरित हुए हैं, महान आत्माएं भी यहाँ अवतरित हुए हैं। और इस स्थिति से इस समय पर हमें इतना जागृत अपने आप को रखना है कि हमें अपनी हर रीति से सिर्फ देह की संभाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ लेकिन कुछ आत्मा जो चेतन शक्ति है उनके सेफ्टी के लिए हमें ईश्वर की याद का ही एक कोष पहनना चाहिए और ईश्वरी याद का कोष ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी प्रकार की महामारी की बीमारी भी आ न सके। तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए। आज जो यहाँ संत समागम का इतना मेला आया हुआ है, मेला लगा है, तो उन्हों को यही कुछ ऐसे क्रांतिकारी विचार अथवा पूरे देश के विदेश के मानव आत्माओं को कुछ ऐसे लाभान्वित करे, ऐसे विचारों को सोचना चाहिए। अंदर में ऐसी भावनाएं आनी चाहिए कि हमारे अंदर में कुछ ऐसा शक्तियां, ऐसी शांति का प्रकंपन जिसमें शुद्धता हो, स्वच्छता हो, कोई प्रकार की मलिनता न हो, पवित्रता हो, सादगी भी हो, और साथ साथ में इतना माहौल को पवित्र बनाना चाहिए कि हर घर, हर परिवार, हर समाज, हर देश, पूरा विश्व की आत्माएं सुखी हो, खुश रहे। और ये भारत देश एक दिन, जैसे कि हमारा देश जो अभी एकदम दिनों दिन उन्नति की बदली में अवनति की ओर जा रहे हैं, सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, परंतु उनको उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सभी को मिलकर के कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। उसके लिए मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है कि जो हम धर्म की रीति से भी धर्म शास्त्रों में भी पढ़ा है कि सरोवर तरोवर संत जन, चौथा वर्ष में परमारथ के कारण चारो दरिया दे। सरोवर कभी अपना जल पिता नहीं है और तरोवर वाला जाल कभी अपना फल खाता नहीं है, और संत जन परम हितकारी होते हैं। मेरे माना बारिश भी परम कल्याणकारी है, पर तो वर्तमान समय मनुष्य आत्माओं के अंदर में, जो आत्माओं को कहते हैं मन बुद्धि संस्कारों का बना हुआ एक पिंड है, उस आत्माओं के अंदर में कुछ ऐसी बुरी भावनाएं, बुरे लक्षण, दुर्गुण ऐसे आ गए हैं कि जिस कारण वो अच्छी सोच कर नहीं सकते हैं और किसी के प्रति भी शुभ भावनाएं भी रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारा मानव जीवन है ही औरों के लिए। कहा जाता है कि जियो तो औरों के लिए जियो। यह जीवन की सबसे बड़ी उत्तम कला, जो ऐसी कला एक परमात्मा पिता हमें सिखा सकता है, तो ऐसी कला से हम मानव जीवन को इतना उत्थान कर सकते हैं कि जिस जीवन के अंदर कभी भी निराशा न हो, हताशा न हो, कभी पराधीनता न हो, और कभी भी जीवन के अंदर मानसिक बीमारियां, मन कभी डिस्टर्ब न हो। तो इस तरह से हमें जब ये कोच हमारे अंदर में हो, कहा जाता है कि जब ऐसे समय पर हमको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि हिम्मत न हार, एक प्रभु को पुकार। ऐसे समय पर प्रभु के आगे हमें यही प्रेयर करनी चाहिए, ऐसे दिल से, जीवन जान से हमें प्रभु को याद करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु तू ही ऐसी भावनाएं सभी में जागृत कर, जिसको कहते वसुदेव कुटुम्बकम। और तो प्रभु ये भी कहता है कि मैं भी, एक श्लोक भी मुझे आ जाता है कि राम जरू के बैठकर सबका मुजरा देत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा उसको देत, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भगवान ने भी हमको कहा है कि ये आत्माएं, ये बच्चे, अभी आप जागृत हो जाओ, और जागृत होकर के पहले जो लॉकडाउन में अपने आप को घर भीतर में देखने की थोड़ी कोशिश करो, अपने अंदर को जागो। सिर्फ बाहर की दुनिया को तो देखा, बाहर की दुनिया में क्या है, व्यक्ति है, वैभव है, वस्तुएं हैं, बहुत कुछ सामग्री है, साइंस की सामग्री है, बहुत कुछ इस दुनिया में तो बहुत कुछ देखने का है, लेकिन फिर भी ये देखते हुए भी हमें अपने अंतर को भी टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर में जो कुछ बुराइयां हैं उनको हम किस तरह से निकालें और अच्छाइयों को भर कर के मूल्यवान कैसे बने, हम कैसे, हम किस तरह से हम अपने ऊपर स्वावलंबी होकर के जीवन जीना सके। क्योंकि जब तक हम खुद ही अपंग जैसे होंगे, शिथिल होंगे, हम खुद ही किसी के ऊपर डिपेंड है, तो नेचुरल है तो औरों की सेवा कैसे कर पाएंगे। हम किस तरह से उनको हम आगे बढ़ा सकेंगे। पहले आध्यात्मिक शक्ति हम खुद ही ग्रहण करें अंदर में। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब ये है कि ईश्वरीय शक्ति हमें चाहिए इस समय पर। वो शक्ति जब हमारे जीवन के अंदर काम करेगी तो हम इस दुनिया में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीमारी बीमारी सुनकर के सभी एक दो को देख करके ही बीमार होते जा रहे हैं, और सभी को जरा सा भी बुखार आता है तो हरेक को लगता है मुझे बीमारी आ गई। जरा सी खांसी आई तो समझते मुझे वो बीमारी आ गई। ऐसा करके सभी भयभीत हो रहे हैं, सभी लाचार हो रहे हैं, सभी अंदर ही अंदर में खफा हो रहे हैं। लेकिन हमारा आज के सत्संग के अंदर में संत समागम में इतना ही कहना है कि हम सभी धर्म आत्माएं जागृत होकर के कुछ अपने देश निवासियों के लिए पूरे विश्व स्तरीय के लिए हम कैसे उन्नति को प्राप्त करें, उसके लिए ठोस कोई ऐसा कोई कोच बना दे जिस कोच के अंदर आत्माएं रहे ताकि अपनी जागृति करे, अपने आप को पहचाने मेरे अंदर में कौन सा अवगुण है। और जो परमात्मा ने हमें यहाँ संसार में भेजा तो कितनी शक्तियां दिया, विशेषताएं दिया, गुण दिया, सब कुछ दिया है। अंदर थोड़ा ही अंदर आत्मा को खोल के देखो तो भरपूर भंडार है शक्तियों का। शांति का भी भरपूर भंडार है, सुख भी इतना ही है, खुशी भी इतनी है, आनंद भी इतना ही है। परंतु आज के इंसान को वो कुछ लेना नहीं आता है। थोड़ा सा भी निराश हुआ तो बस करो आत्महत्या, आत्मघात। परंतु ये कोई जीवन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। लाइफ के अंदर तो हमें ये सोचना चाहिए कि मानव देह हमारा कितना अनमोल है, कितना अमूल्य है। उसके अंदर एक सच्चा हीरा आत्मा है। उन हीरे को बेदाग ही बनाने के लिए हमें नित्य निरंतर प्रभु को सिर्फ प्रार्थना या प्रेयर नहीं करना है, लेकिन उसकी पहचान करके हमको उसको याद करके उनसे शक्ति लेना है। गीत तो गाते हैं कि शक्ति देना इतनी हमें दाता, परंतु शक्ति देने वाला दाता तो शक्ति दे रहा है, परंतु लेने की फुर्सत हमें नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि आज हम सभी यहाँ मिले हुए हैं इस अच्छी स्टेज के ऊपर ज्ञान सरोवर, और उसमें भी इनकी स्टेज के ऊपर हम सभी आज मिले हुए हैं माउंट आबू में। हम सभी क्यों नहीं एक दृढ़ संकल्प करें कि कम से कम रोज सवेरे उठ करके, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट तो हम निकाल सकते हो, 5 मिनट ही हम सच्चे दिल से, साफ दिल से, पवित्र दिल से प्रभु को याद करें कि परम पिता परमात्मा हम तेरे संतान हैं, आप सर्वशक्तिमान हो, हम आपके बच्चे हैं, आप जो भी हमको कहेंगे वो हम करेंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसी बुद्धि जब हमारी बनेगी तो परमात्मा पिता भी उनको कोई न कोई संकेत अच्छा देते रहेंगे, और वो संकेत के अनुसार उनकी बुद्धि की लाइन धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। और अभी का जो देश हमारा, बल यूं तो हम बहुत ही विकास कर चुके हैं, लेकिन विकास इतना होते हुए भी विनाश का नजारा क्यों दिखाई दे रहा है? उसका कारण सभी आत्माएं ही, मानव आत्माएं हैं। अब यह विनाश के कारण में न लग करके और भी अधिकतर अधिक विकास करके इस धरा पर हम स्वर्ग लाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इस धरा को स्वर्ग बना करके ही रहेंगे। तो ऐसी हमारे अंदर की भावना होगी, हमारे मन के अंदर ऐसे पवित्र भावना आएगी, तभी हम इस संसार को जो पहले था, आदि काल से हमारा भारत बहुत ही ऊंच था, बहुत ही संस्कृति प्रधान था, बहुत ही सभ्यता पूर्ण था, यहाँ की हर आत्माएं सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, निर्विकारी भी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थी, अहिंसा परम धर्मी थे। और वर्तमान समय आप देखेंगे कि आज का संसार क्या हो चुका है, देख करके तरस आता है, घृणा नहीं उत्पन्न होती है, तिरस्कार नहीं आता है, लेकिन और भी अंदर में रहम आता है। और जितना हम रहम करते हैं लोगों के मन में उतना वहम पैदा होता जा रहा है। परंतु परमात्मा के साथ जिसका सच्चा प्रेम है वो कभी अहम या वहम के तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन सभी को रहम करेंगे, ये हमको गारंटी है। इसलिए आज की सभा में इतना ही मैं बोल करके अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और फिर से सभी को जागृत होने के लिए और एक रस होकर के एकता के सूत्र में परोने के लिए हमारे धार्मिक जो भी संत महंत यहाँ पधारे हैं उनका योगदान इस कार्यक्रम में यही चाहिए कि आप भी हम सभी मिलकर के इस धरा को पावन बनाने में सफल कैसे बने, उनके लिए हम कितनी ऊंची सोच करनी है और कितना अच्छा नजारा हम देखना चाहते हैं, वो फिर से इस धरा को हम संपूर्ण पावन बनाए। वरना ये प्रकृति भी घड़ी घड़ी मन अंदर में मन जब पतित होता है, मन जब नाकामयाब हो जाता है तो उसमें निरुत्साहपन आ जाता है। परंतु हम ये साइड में न जाकर के हम अच्छी साइड में मुड़े और हम यही सोचे और फिर से यही याद करें कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, कई जन्मों का मैल हमारा धुलता है तभी कि जब सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं। अभी वो समय भी आ चुका है जो प्रभु भी सभी की पुकार सुनकर के इस धरा पर आ चुका है। अभी हम जो भी कुछ हमारे दिल से कुछ प्रेयर करेंगे तो उसके तक हमारे दिल की आवाज पहुंचेगी और वो भी जरूर उसमें कहता है हिम्मत का, आप एक कदम आपका हजार कदम मेरा है, परंतु एक कदम तो आप चल करके आओ तो हजार कदम मैं सामने से आने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी तैयार हो एक कदम चलने के लिए? हाँ जी व ना जी। अगर सभी तैयार है तो समझ लो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मनिर्भरता के लिए हमें बस एक कदम यही उठाने का है कि सभी प्रभु की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, सभी अच्छे विचारों की तरफ, श्रेष्ठ विचारों की तरफ, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ विचारों की तरफ हम सभी अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि परमात्मा के हजार कदम हमारे सामने आएंगे ही और ये धरा पावन बन जाएगी और जो इस धरा पर रहते हैं वो भी सभी मानव आत्मा संपूर्ण सुखी और खुशमय आनंदमय बन जाएंगे, अवश्य बन जाएंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ, शुभ कामना करती हूँ, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।
तहे दिल से धन्यवाद राजयोगिनी गोदावरी दीदी का। अब हमें अत्यंत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के चेयरपर्सन राजयोगी बी के करुणा भाई जी अपने प्रेरणादायक वक्तव्य से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं। आप अवेकनिंग टीवी, पीस म्यूजिक टीवी और रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के चैनल हेड हैं। ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स के आप मीडिया स्पोक्सपर्सन और चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं तथा मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर हैं। आइए सुनते हैं करुणा भाई जी का अनुभव युक्त वक्तव्य।
सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे भारत के सभी धार्मिक प्रवाह के कार्यकर्ता एवं जो इस भारत को अभी तक विश्व में ये एक धार्मिक देश है, स्पिरिचुअल कंट्री है, मदर कंट्री है, अभी भी यहां के खून में आप कैसे हैं पूछे तो उनकी दया है ये कहते हैं। तो इसका कौन है? आप सभी हमारे देश के धार्मिक या धर्म की रक्षा करते हुए धर्म रक्षिते रक्षितः तो आप है, तो इसीलिए इस समय पर जो समय चल रही है कलयुग का अति हो रही है, तो ऐसे समय पर सारे विश्व की नजर हो तो आप सभी महान भावों के लिए है। पूज्य हमारे धार्मिक महंत ऋषि मुनि या पंडित जिनको भले अपने फैमिली से नाम आते हैं, जिनको हम लोग कई जगह में कहते हैं पुजारी है, कई जगह में हम कहते हैं पंडित जी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ये सब हमारे फैमिली के नाम है, परंतु वो सब धर्म के हैं। भारत में देवी देवताओं का नाम अभी तक भी है, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधा कृष्ण, ये सब देवताओं के देवियों के जो नाम आप सबकी प्रयास से हैं, आप सबका त्याग से है। मुझे याद है हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा हमको ये कहते थे, बच्चे जो आज आप यहां है और ये सीख रहे हैं, आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक महा विश्वविद्यालय, सारे विश्व को एक विद्या सिखाने वाली संस्था इतने देशों तक पहुंची है, तो इसमें भी हमको आप सभी धार्मिक जो महात्माओं का ही आशीर्वाद से ये हमको सफलता मिली है। हमने इतना ही किया है जो आप भले अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही भाषा से, चाहे संस्कृत भी हो क्यों नहीं हो, तो जो बातें सिखाए हैं, तो इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक विद्यालय के रूप में, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में आ जाते हैं, तो जाकर के वो अपना डिग्री प्राप्त करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो इसी प्रकार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय युवत आज के दिन जो हमारे दादियां हैं, जो सीनियर मोस्ट हमारे जो भाई हैं, बहने हैं, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 84 इयर्स से ये शिक्षा प्राप्त करते हुए विश्व में सिखाया है प्रैक्टिकली, तो वो आप सबके आशीर्वाद से है। हमने जो कुछ भी हमको सिखाया गया उसको अपने जीवन में लाने की प्रयास की। मुझे मालूम है, मैं भी बचपन से अनेक संतों को सुनते आया हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता था तो जो आज आपके सामने मैं बैठा हूं, तो कारण यही है कि जो हमको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया वो हमको यहां सिखाया गया है। जिस शिक्षा से आज हम संतुष्ट है, लाखों परिवार है जो उस दुनिया की पढ़ाई भी है परंतु जीवन इस पढ़ाई से हमने प्राप्त किए हैं, हम संतुष्ट है, हम खुश है, और हमको विश्वास है जो हमारी ये जीवन सफल हुआ, क्योंकि जो शिक्षा हमको एक मानव होते हुए प्राप्त करनी है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमको सिखाया। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो इसी प्रकार हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत प्यार से, जैसे अपने ही फैमिली के एक माँ अपने बच्चों को बड़े करते हैं, तो इस तरह से आज लाखों परिवारों को उन्होंने इस संस्कृति में लाए हैं। इसी संस्कृति को एक समय पर शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहते थे, जो एक समय पर वो नाम तक भी रहने नहीं दिया, परंतु वो सभी के डीएनए में रह गया, जो वो बदल नहीं पाए वो लोग, तो वो फिर से अभी हमारी बहनें जागृत किए हैं। हम कोई नए नहीं बना रहे हैं, जो संस्कृति थी उसी संस्कृति को फिर से वापस हमारे जीवन में प्रैक्टिकल, सुबह उठना कितना बजे है, जो अमृत वेला आप समझ सकते हो। तो इस संस्था में आने वाले भाई बहने सुबह 3:30 बजे उठते हैं, जबकि अनेक संस्कृति में लोगों का सोने का समय होता है, वो तो रात और दिन का अंतर है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा को प्राप्त किए हैं, तो वो मरने से भी नहीं डरते हैं। कोरोना तो छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ तन का दुनिया में बहुत योग सिखाते हैं, पर यहां तन का भी, मन का भी और सोसाइटी का भी हम लोगों को ध्यान है कि आप सबको साथ लेकर के ही विश्व का परिवर्तन हो सकता है। सभी चाहते हैं कि विश्व बदल जाए, विश्व अच्छा हो जाए, स्व की तो आप संतुष्ट है कि हम बदल गए हैं, तो इसीलिए स्व परिवर्तन से, अपनी ही चाल चलन से हम विश्व को बदलने का अपना जीवन का लक्ष्य रखे हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं। आप जो भी अभी बोल रहे हैं वो नहीं है, आप हमारे भाई बहने हैं, क्योंकि हम सब एक पिता के हैं। तो इसी भरोसा से, इसी फेज से हम एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ हैं, भारत के जितने भी धर्म वाले हैं, जितने भी संत हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए, इस विश्व के लिए त्याग किए हैं, तो वो इस कार्य में हम सबके साथ है और हम सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो मुझे खुशी है, तो आप सभी ने ये पूरा कॉन्फ्रेंस सुने हैं, और आप और हम सब मिलकर के फिर से वही दैवी स्वराज्य को, सनातन धर्म को इस विश्व में वापस लाएंगे, ऐसी आशा करते हुए, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया राजयोगी करुणा भाई जी का। आप हम सभी को सशक्त बनाने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। अब हमें बेहद खुशी है धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बीके सोम प्रभा बहन हमारे साथ हैं। आप महाराष्ट्र सोलापुर के सब जोन डायरेक्टर हैं। आपने विश्व में सबसे बड़ा और सुंदर बैनर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए 2 बार वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके धार्मिक व सामाजिक सेवा देखते हुए बसव रत्न अवार्ड से आपका सत्कार किया गया है। अब दीदी जी अपने अनुभवी विचार हमारे समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। परम प्राणेश्वर, परम पिता, परमात्मा, निराकार ज्योतिर्विंद स्वरूप, विश्व रक्षक, विश्व शिक्षक, विश्व परिपालक, निराकार ज्योतिर्बिंदु कल्याणकारी शिव पिता के प्रिय संतान आत्माओं एवं आज विशेष रूप से इस ब्रह्मा कुमारी धार्मिक प्रभाव की ओर से आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में सहभाग होकर के जो श्रवण कर रहे हैं और जो देख रहे हैं उन सर्व आध्यात्मिक अभिलाषी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को हृदय पूर्वक सत सत प्रणाम करते हुए मैं आज के जो विषय है, वैसे तो इस धार्मिक प्रभाव के ये कॉन्फ्रेंस में अम्ब्रेला थीम रखा हुआ है आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान, यानी विश्व का परिवर्तन उत्थान उद्धार होने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की अति आवश्यकता है। इस अम्ब्रेला थीम के विषय को लेकर के हम कल से भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करते आए हैं। आज का भी इस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन के जो इस कॉन्फ्रेंस में विषय है कि आत्मनिर्भरता के लिए धार्मिक नेताओं का योगदान। तो वास्तव में हर क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता आवश्यक है, तो उसी प्रकार धार्मिक व्यक्तियों को यानी धार्मिक नेताओं को भी इसकी आवश्यकता है। वो कैसे हम इस आज के टॉपिक से समझेंगे, दो बातों का विश्लेषण करेंगे। एक तो आत्मनिर्भरता क्या है, उसको हम कैसे अपनावे, और दूसरा इसमें धार्मिक नेताओं का योगदान क्या है। तो उसमें पहली बात है जो आत्मनिर्भरता क्या चीज है। आत्मनिर्भरता यानी आत्मावलंबन, अथवा जिसको हम स्वावलंबन भी कह सकते हैं। स्वावलंबन, एक तो स्वावलंबन है, दूसरा आत्मविश्वास, और तीसरा है हम अपने स्वयं सामर्थ्य द्वारा जीवन यापन करना। तो इन तीन बातों से हमारा आत्मनिर्भरता अवलंबित है। तो वैसे हम स्वयं के स्वयं अवलंबित रहना चाहिए, दूसरों के सहारे चलने का अवलंबन नहीं होना चाहिए, दूसरों के सहारे पर चलने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ने हेतु, तो वो अपने गांव से स्टेशन पर उतरा। उतरते ही उसने कुली कुली कहने लगा। जब कुली कुली बोल के चिल्लाने लगा तो वहां ही उसके पास खड़े हुए एक सीधा साधा व्यक्ति उसके सामने आए और उन्होंने पूछा, आपको कहाँ जाना है बेटा? तो उसने कहा, मुझे इस स्थान पर जाना है। तो ठीक है, मैं आपका सामान उठाता हूँ। तो उन्होंने स्वयं उनका सामान उठाए, हालांकि उसका सामान इतना कोई ज्यादा नहीं था, स्वयं वो विद्यार्थी उसको कैरी कर सकता था। तो फिर वो महाशय उस सामान को उठा करके लेके गए जिस स्थान पर वो विद्यार्थी ने उसको ले गया, वहां पर वो सामान उन्होंने छोड़कर वापस जाने लगे। तभी उस विद्यार्थी ने उस महाशय से पूछा, आप ऐसे ही जा रहे हो तो आपका पारिश्रामिक मूल्य जो है वो लेकर जाइए। तो तभी उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मुझे पारिश्रमिक कोई स्थूल वस्तु से पैसे से नहीं चाहिए, आप स्वयं का काम स्वयं करना सीखो तो वही मेरे लिए पारिश्रमिक है। तो वो ऐसे कह करके वो चले गए। फिर दूसरे दिन जब वो विद्यार्थी तो स्कूल में गए, कॉलेज में गया, तो उस समय पर देखता है तो उसको आश्चर्य लगता है कि उस पढ़ाने वाली कुर्सी पर वो जो वहां के प्रधान प्राचार्य के रूप में जो महाशय उसके सामान उठा करके लेके आए थे वही दिखाई देते हैं। उनको देख करके उसको बहुत आश्चर्य भी लगता है, साथ साथ वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है, लज्जित होकर के वो प्रधान आचार्य के सामने जाकर नतमस्तक होता है। तभी वो प्रधान आचार्य उनको उसको उठा करके उसको गले लगाकर उसके पीठ तपतपा करके, देखें देखो आपने अपने आप को महसूस कर लिया, गलती को पश्चाताप कर लिया, यही वास्तविक क्षमा है। तो इसीलिए आपको कोई अभी क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। तो केवल आप स्वयं अपने आप में अवलंबित रहो, अपना कार्य आप करते रहो, आप स्वयं आत्मा अवलंबन में रहो। तो जब ये उपदेश उस विद्यार्थी को मिला तभी से वो विद्यार्थी अपने आप को स्वयं अपना कार्य यानी आजीविका का कार्य करना शुरू किया। तो वास्तव में वो महाशय थे उस विद्यार्थी को सिखाने वाले, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक महान व्यक्ति थे, गुणवान थे, सर्व गुणों के धनी थे, तो विशेष समाज सेवी थे, तो वो सुप्रसिद्ध एक व्यक्ति थे कलकत्ता की। तो ऐसे महान व्यक्ति भी किस प्रकार से हम स्वावलंबी होकर के कार्य करना चाहिए, उसको केवल उस एक विद्यार्थी के लिए नहीं, कई लोगों को, समाज के कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने सिखाया, उनके खुद के कर्म से उन्होंने दर्शाया। जैसे कहा जाता है, जैसा मैं कर्म करूं मुझे देखकर और करेंगे। तो जब हम अपना स्व परिवर्तन करते हैं तभी हम अन्य आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हैं, समाज का परिवर्तन कर सकते हैं, देश का परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर जब स्वावलंबन और आत्मविश्वास साथ साथ हमारा सामर्थ्य को हम जानकर अपने जीवन यापन करने को सीखते हैं, यही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। ये हो गई बौद्धिक बात, यानी इस शारीरिक दृष्टि से हम लोग अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे रहना है, यह हमने एक उदाहरण के रूप में सुने, परंतु उसके लिए केवल सुनने से अथवा देखने से आत्मनिर्भरता आना शायद ही, मुझे लगता है, कठिन होगा। उसके लिए पहली बात हमारे आंतरिक बल बढ़ाना होगा, यानी हमारा मनोबल, आत्मिक बल भी अति आवश्यक है, जिसको विल पावर कहा जाता है। जितना हम अपने आत्मिक बल को, अपने आत्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऊंच बनाते हैं, उतना ही हम आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये कार्य हमें आध्यात्मिक व्यक्तियों को, यानी धार्मिक नेताओं को करना और कराना बहुत आसान होता है, कारण धार्मिक नेताओं का यानी आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन ही वैसे शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, सदैव ईश्वर के चिंतन में उनका समय व्यतीत होता है। तो ऐसे जो विशेष धार्मिक व्यक्तिमत्व है, उनका भी योगदान इस कार्य के लिए अति आवश्यक है। तो आत्मबल के लिए आंतरिक तन मन धन, मन वचन कर्म से पवित्रता की आवश्यकता है, यानी आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता है, आंतरिक स्वच्छता की आवश्यकता है। हमारे मन में निर्मलता चाहिए, नम्रता भाव चाहिए, ऐसे जीवन हम बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान विशेष रूप से हमें धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसमें भी जो हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग का ज्ञान प्राप्त होता आ रहा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में भी जिन्होंने भी कोई भी क्षेत्र में मनोबल को बढ़ाया है, तो वो व्यक्ति दुनिया में महापुरुष बन करके सारे विश्व में आदर्श बन करके गए हैं। तो उनके अंदर सदैव परमात्मा के सत्य ज्ञान की जो सरिता बहती रहती है, तो वो सरिता के माध्यम से वो अपने सूखे मन को हरा भरा कर सकता है। तो ऐसे ज्ञान, ऐसे जीवन हम धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा बना सकते हैं। तो इसीलिए हम जो धार्मिक नेताएं हैं अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो भी ईश्वर की आराधना में श्रद्धा रखते हैं, तो हम सबका आदि कर्तव्य है स्वयं भी हम आत्मनिर्भर होकर के दूसरों को भी आत्मनिर्भरता को अपनाने को सिखाना है। क्योंकि हम सबको पता है हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने मन की बात पर यह स्पष्ट करके बताया है जो वर्तमान समय पर COVID-19 जो कोरोना महामारी का ये वृद्धि होती जा रही है, तो इस समय पर हमें अपने आप के ऊपर डिपेंड रहकर अपने स्वयं के कार्य हम स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मनिर्भरता का एक हम अभ्यास वर्तमान समय पर अपनाना अति आवश्यक है। तो इस कार्य को हम स्वयं भी करें और अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के अपने घर के मेंबर्स को भी ये आत्मनिर्भरता को हम सिखाए और साथ साथ समाज के लिए भी हम एक आदर्श बने। ऐसे वर्तमान समय हम सब धार्मिक प्रभाव के जो भी भाई बहने हैं, हमारा भी ये आदि कर्तव्य है। तो हम भी इस प्रकार से आत्मनिर्भरता को अपनाकर अपने जीवन को स्वावलंबी बनावे और साथ साथ हम जैसे हमारे पूर्वज जो भी चाहे राजकारण क्षेत्र के लोग होंगे, चाहे धार्मिक क्षेत्र के होंगे, चाहे सामाजिक, चाहे वैज्ञानिक, कोई भी क्षेत्र के महान व्यक्ति होकर के गए हैं, तो वो सभी अपने मनोबल को बढ़ाकर स्वावलंबी होकर विश्व में अपना कार्य स्वयं करके दिखा करके गए हैं। तो भले वो धार्मिक व्यक्ति रहे, वो आध्यात्मिक व्यक्ति रहे, फिर भी उन्होंने स्वयं अपना कार्य समाज में करके अपने आत्मबल के द्वारा स्वयं जीवन यापन किस प्रकार से करना इसको सिखा करके दिए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे हम जानते ही हैं हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी स्वयं अपने हाथ से सूती का चक्कर लगा करके कपड़े बुनने का कैसे सब सिखा के गए, स्वयं अपने हाथों से अपने कर्म से स्वच्छता को सिखा करके गए। तो उसी प्रकार से रोहिदास महान विभूति ने किस प्रकार से स्वयं जूते सिलाकर अपनी सेवा करते गए। तो उसी प्रकार जो कबीर दास जी ने अपने हाथ से कपड़े बुनकर खुद का नहीं सारे समाज के लिए भी ये सेवा करके दे। ऐसे कई महान विभूति भगतगण धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करके दे। वैसे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भी आदि संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी, उन्होंने भी शुरू शुरू में जब ओम मंडली की स्थापना की, तब से लेकर के अपने अंतिम समय तक भी तो जो भी हमारे आदरणीय महान जो दादियां वरिष्ठ भाई इस संस्था में शामिल हुए उनको भी स्वयं पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपने हाथ से कर्म करके दिखाए सिखाए स्वयं आत्मनिर्भरता को कैसे अपनाना है वो स्वयं हाथ से करने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाने में संलग्न रहे। तो जिस कारण उन्होंने स्वयं कर्म भी करके दिखाया और उनको ये भी पता था कि केवल कर्म करने से कोई सीख नहीं सकता, उनके अंदर आत्मबल भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए। तो वो आत्मबल यानी मनोबल भरने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है और सहज राजयोग के अभ्यास की आवश्यकता है, अर्थात ईश्वरीय चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी भी है साथ साथ एक शक्ति स्वरूप भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परम शक्तिवान है, तो उनके हम सब संतान आत्माएं शक्ति स्वरूप है। तो वास्तव में ओरिजिनली मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, उसको जानकर उसको अपनाकर उसको मानकर हम परमात्मा की चिंतन से आत्मबल को बढ़ाए आत्मशक्ति को बढ़ाए तभी हम आत्मनिर्भरता को अपनाकर अन्य आत्माओं को भी आत्मनिर्भर होने का एक शिक्षा हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार अति आवश्यक है, हम चारों ओर देख रहे हैं किस प्रकार से चारों ओर कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियां भी फैले हुए हैं और साथ साथ आंतरिक युद्ध और देश देश के अंदर भी एक विशेष घर्षण चल रहा है। तो इन सब को निवारण करके हम विश्व में एक परिवर्तन लाना है, इसका उन्नति करनी है, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता हमें सब कुछ सिखाता है, आत्मा का ज्ञान भी सिखाता है और आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा का भी सत्य परिचय सिखाता है और इस सृष्टि चक्र के अंदर किस प्रकार हम पार्ट बजाते हुए वर्तमान समय इस संगम समय पर आकर के पहुंचे हुए हैं। यही इस कलयुग का अंतिम समय है और भविष्य में जो सत्युग की दुनिया आने वाली है वो इस भारत वर्ष में ही हमें स्थापन करना है। इसके लिए हम सब का आद्य कर्तव्य है हम अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में, वैश्विक उन्नति के कार्य में हम सब धार्मिक नेताओं को योगदान देकर हम फिर से इस विश्व का कल्याण करना है। ओम शांति, ओम शांति।
अंतःकरण से धन्यवाद दीदी जी का। आज के इस सत्र में अपने अनुभव का प्रकाश फैलाने हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक मुनि। 1993 में आपने दीक्षा ली। विश्व अहिंसा संघ और भी कई इंस्टीट्यूशंस का सुकौशल निर्देशन कर रहे हैं। आप सर्वधर्म संसद के निर्देशक हैं। आप गुरु संगमम के फाउंडिंग मेंबर हैं। आपसे अनुरोध है आज के विषय पर अपने चिंतन की धारा हमारे समक्ष रखें।
ओम अरहम नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आज संपूर्ण विश्व चिंतित है, परेशान है, दुखी है। लेकिन यह महामारी अगर किसी की देन है तो वह मनुष्य ने ही इसे उत्पन्न किया है और उसी की विकृत सोच और विकृत मानसिकता के कारण यह वायरस उत्पन्न हुआ या इसे संग्रहित किया गया, पैदा किया गया। अगर यह लैब से वायरस निकला है तो यह व्यक्ति की विक्षिप्त मानसिकता और सोच के कारण निकला है, और अगर यह वायरस उस मांसाहार की मार्केट से निकला है तब भी यह व्यक्ति की, मनुष्य की विकृत जो भोजन की लालसा है, आहार की जो प्रक्रिया है, उसके कारण यह वायरस आया है, जिसने जीवन के केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाला है। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आत्मिक नुकसान हुआ है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम जीवन को समझें और मनुष्य जीवन की जो संरचना है वह शुद्ध शाकाहारी प्राणी की संरचना है, तो हमें शाकाहार को विशेष रूप से अपनाना होगा। इसके लिए जैन दर्शन हमें समाधान देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अहिंसा संयमो तवो, कि हमारे जीवन में अहिंसा आनी चाहिए, हमारे जीवन में संयम आना चाहिए, हमारे जीवन में तप आना चाहिए और हमारा जीवन शाकाहारी बनना चाहिए। हम जैन जीवन शैली को अपना करके, योग अध्यात्म की प्रक्रियाओं को अपना करके इस महामारी से निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने जीवन में स्वस्थ, शांति के साथ अपनी प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को समझें, क्योंकि जीवन है तो सहज है, दुख होगा, सुख होगा, अनुकूलताएं होंगी, प्रतिकूलताएं होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन इसी जीवन में महापुरुषों ने उस परम स्थिति को, उस परम आनंद को, सुख को, शांति को भी प्राप्त किया है, जिसे पाकर के व्यक्ति अपने उस पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जीवन कष्ट कटंकित है तो मानव क्यों रोया करता है, जीवन कष्ट कटंकित है तो मानव क्यों रोया करता है, नव बसंत का सुमन सुगंधित, नव बसंत का सुमन सुगंधित कांटों में ही खिलता है, कांटों में ही खिलता है। जीवन है तो दुख रूपी, प्रतिकूलता रूपी कांटे भी हैं और सुख रूपी, शांति रूपी, आनंद रूपी फूल भी इसमें खिलते। अब हम अपने जीवन के फूल को विकसित करें, और अपने जीवन में सद्गुणों की सुगंध को पैदा करें, जिससे हमारा स्वयं का जीवन भी महकेगा और उसके साथ साथ जिस परिवार में हम रहते हैं उसमें भी हम महक को बिखेरेंगे, जिस समाज में और राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र को भी हम सुशोभित और सुगंधित करेंगे और पूरे विश्व को भी हम सद्गुणों की सुगंध से महका करके जाएंगे। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है। और ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है, क्योंकि ऐसे संकट में, ऐसी विकट परिस्थिति में जिसे उत्पन्न हम ही लोगों ने किया है, तो हम ही लोग इसको दूर करेंगे और दूर करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। ये हमें हमारी गलतियों के कारण ही यह सब कुछ हुआ है और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बनती है वह भी मनुष्य की, हम लोगों की ही बनती है, जिसके कारण प्रकृति ने हमें यह एक सीख दी है, एक थपेड़ा मारा है, एक थप्पड़ लगाया है, जिसके कारण जैसे माँ बच्चों को मारती है, डांटती है, लेकिन किसके लिए कि जब बच्चे असद मार्ग पर जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तो उनको सीख देने के लिए कभी कभी डांटना भी पड़ता है। प्रकृति भी हमें डांट रही है, हमें कुछ सिखा रही है और हमें उसके प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास बना करके प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली को, जीवनचर्या को बनाना हो। वह अगर हम बना सकते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा, शांत भी रहेगा और समृद्ध भी रहेगा, क्योंकि प्रकृति में हमेशा ये नियम है कि कोई भी चीज आती है तो जाती भी है, तो यह बीमारी भी आई है तो यह भी जाएगी, और यह भी देखें तो पूरे विश्व में या भविष्य में भी आएंगी ऐसी बीमारियां, भूतकाल में ऐसी आती रही, क्योंकि जैन धर्म में अमोघ नियुक्ति में आज से 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने वर्णन किया है, जो आज WHO ने नियम निर्धारित किए हैं, जो सावधानी बताई है, उस समय भी आगमों में और शास्त्रों में यह वर्णन है। वह सावधानियां सभी इसी से WHO के संकेतों से, सुझावों से मिलती जुलती हैं। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, उसे हम सीखें। प्रकृति धरती मां ने अपने घावों को भरा है। जिस हिसाब से प्रदूषण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरी विश्व की समस्या बनी हुई थी और इसके लिए विश्व के सभी देश, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और लाखों एनजीओ संस्थाएं लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके भी जिस समस्या से छुटकारा नहीं पा पा रहे थे, निजात नहीं पा पा रहे थे, उन लोगों को देखें तो इस लॉकडाउन ने और इस महामारी ने उस महान समस्या से हमें छुटकारा दिलाया है। आज एयर का, वायु का प्रदूषण कम हो गया है और नदियों का पानी, सरोवरों का पानी, सागर का पानी निर्मल और पवित्र शुद्ध हो गया है। ओजोन लेवल का जो छिद्र था वह भर गया है। प्रकृति में देखें, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं और एक सुंदर स्वच्छ वातावरण हमें मिला है, जिसको बनाए रखने का कर्तव्य पूरी मानवता का है, हर मनुष्य का है। और प्रकृति ने अपने आप को बहुत कुछ संभाला है। ऐसे में संतों का कर्तव्य क्या है? संत हमेशा प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, मंगल के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्योंकि दवा अपनी जगह काम करती है, जिसमें पूरी मेडिकल साइंस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, सभी लोग दिन रात एक करके सेवा में लगे हुए, संतों की प्रेरणा से बनी हुई संस्थाएं, उनके भक्त लोग भी यथाशक्ति सेवा के कार्य कर रहे, तन से, मन से, धन से, आहार का दान, औषधि का दान कर रहे हैं और संत लोग मार्गदर्शन देके उनको प्रेरित करके, आशीर्वाद देकर के उनसे यह सदकार्य मानवता के कल्याण के लिए, भले के लिए करा रहे। तो यह बहुत बड़ा कार्य और ऐसे में हमें उस प्रकृति के, उस परमात्मा विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे पतझड़ के बाद में नव वसंत आता है, नए पत्ते आते हैं, रात्रि के बाद में दिन आता है, इसी प्रकार से दुख के बाद में सुख का नया प्रभात होता है। तो यह कुदरत का, प्रकृति का नियम, प्रकृति का एक काल चक्र है, उसे हमें स्वीकार करना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बनाना होगा, जिससे हमारा, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का और पूरी मानवता का कल्याण हो सकता है। ये भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, मिट्टी में सब भूयेषु, कि विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है। और दूसरा सूत्र दिया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि परस्पर हम एक दूसरे प्राणियों के लिए, जीवों के लिए उपकारी बने, सहयोगी बने, उनके विकास में हम सहायक बने, उनका खेम कुशल चाहे। और हम योग की उस विधा को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने दी है, जिसमें हम यम के पालन से, अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, नियम के पालन से व्यक्ति धार्मिक बनता है और आसनों के अभ्यास से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपने जीवन में प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को विकसित कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करके अपने अंदर पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में शांति को वृद्धि कर सकते हैं, शांति को बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो हमारे अंदर विश्व मंगल की, विश्व मैत्री की, सभी के कल्याण की भावनाएं, विचार विकसित होते हैं। और जब ये आते हैं तो पूरी मानवता के हित के लिए हम सोचते हैं, उसके भले के लिए सोचते हैं। किसी कवि की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो कहते हैं कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। विश्व कल्याण की यह भावना, यह भाव हर व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो, यह बहुत ही जरूरी है आज के समय में। क्योंकि हमें प्रकृति, परमात्मा बहुत कुछ देता है और उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए, उस पर हमारी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और वह अगर होती है तो सहज ही हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में उन परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण, मंगल कर सकेंगे। इसके लिए मैं सभी से, पूरी मानवता के लिए, हर मनुष्य जाति के लिए यह प्रार्थना करूंगा कि उसे इतनी सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे जिससे वह अपने उस परम लक्ष्य को भी पा सके और इस विकट संकट से भी उभर सके। दिल मुझे ऐसा मेरे परवरदिगार दे, दिल मुझे ऐसा मेरे परवरदिगार दे, जो गमे हालात को भी हंस के गुजार दे, जो गमे हालात को भी हंस के गुजार दे। ऐसी मंगल भावना मैं प्रकृति और परमपिता परमात्मा से करता हूँ कि सभी को वह सामर्थ्य, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करे, जिससे वह इस विकट घड़ी से निजात पा सके, मुक्त हो सके और पूर्ण स्वस्थ, समृद्ध, शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में विश्व मैत्री, विश्व कल्याण की मंगल प्रार्थना। सर्वथा सौ सुखी थाओ, समता सौ समाचरो, शर्वत दिव्यता व्यापो, शांति सर्वत विस्तरो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धम्मो मङ्गलमुकिट्ठम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितमं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। इस कार्यक्रम के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय प्रजापति आश्रम, उस मिशन की संस्था को, उनके कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद और अवेकनिंग टीवी चैनल के भी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सहयोगियों को इसके लिए आशीर्वाद। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम अरहम, ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जैन मुनि जी का। एक समय था जब इस संसार में संपूर्ण एकता थी, एक राज्य, एक भाषा, एक सत्ता, एक धर्म। लेकिन आज हम देखते हैं इतनी विभिन्नता। अब फिर से अनेकता में एकता लाने के लिए आइए हम जीवन ऊर्जा से भरे मानव, ऊर्जा के स्रोत परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम सबका ऊर्जा स्रोत, हम सबका मालिक एक है। इसी अटल सत्य से हमें वाकिफ कराने वाला वीडियो सॉन्ग देखते हैं।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार
है। दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है,
सारे झगड़ों का मूल है।
ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है,
यही सोचना भूल है।
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए,
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए।
ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया,
ये सब हमने ही बनाया।
आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया,
अपना लगे पराया।
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है, कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है,
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है।
जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
अब हमारे बीच में श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से अपने वक्तव्य को हम सभी के सम्मुख रखने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री गाहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज ओसेकर जी। आप एक ख्याति प्राप्त कीर्तनकार, प्रवचनकार और प्रबंधकार हैं। गत 244 वर्ष से चले आ रहे नाथ पीठ के पवन परंपरा की आप सेवा कार्य संभालते हैं। आप पंढेरी परिचय मासिक पत्रिका के संपादक हैं। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर स्थित श्री विट्ठल मंदिर की समिति के सह अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति की है। आइए सुनते हैं।
रामकृष्ण हरि। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरी काय दातुम मुनिंद्रैहि समागत्य तिष्ठन्त मानंद गंधम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। भगवान पंढरीनाथ भगवान के चरणों में तथा जगज्जननी माता रुक्मिणी जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक साष्टांग प्रणिपात करते हुए आशीर्वाद की पवित्र कामना करते हुए जो भगवान आदिनाथ यानी शंकर जी से चलती आई हुई मेरी गुरु परंपरा है, वहां से अद्यपीठाधिपति आदरणीय प्रातस्मरणीय गुरु बाबा जी महाराज, इनके चरण कमलों को विनम्रता पूर्वक अभिवादन करते हुए, सही बोले तो आज देश एक विचित्र अवस्था में जा रहा है। कोरोना नामक महामारी ने आज प्रवेश किया है। आज लोग भयभीत हुए हैं, कोई अन्न से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, कोई घर में जगह नहीं है बोलकर रहने से परेशान है, कोई भगवान के मंदिर में जाके नामस्मरण करना बोले तो भगवान के मंदिर के द्वार बंद है, इसीलिए वो जहां है वहां ही भगवत नामस्मरण करता है। इस पूर्व अनेक महामारी ने इस धरती पर जन्म लिया ऐसा कहते हैं, और थोड़ा इतिहास देखने के बाद भी आपको पता चलता है कि हर 100 साल को एक महामारी का जन्म होता है। इसमें कॉलरा का जन्म हुआ, इसमें प्लेग का जन्म हुआ, इसमें स्वाइन फ्लू का जन्म हुआ, और अनेक से ऐसे बीमारियां आके गए इस दुनिया में कि जो मानव को प्राण घातक हल्ले तक लेके गए और उनका उनकी जान ले ली। लेकिन ये जो महामारी है एक अलग महामारी है। आदमी का स्पर्श होते ही उस आदमी को रोग पकड़ लेता है। लोग पहले बाहर जाकर दवाखाने में जाके अपनी जान बचाते थे, लेकिन इस महामारी ने उल्टा कर दिया। आप बाहर गए तो मरेंगे और घर में रहेंगे तो बचेंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि आप नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना, लेकिन इसकी जब परीक्षा होती है तो लोग बोलते हैं कि नेगेटिव ही रिजल्ट आना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एक अलग प्रकार से आज दुनिया के लोग परेशान है। इस महामारी पर कोई वैक्सीन नहीं निकला, अनेक लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन वैक्सीन नहीं निकला। हम जरूर कहेंगे हम आध्यात्मिक क्षेत्र पढ़ने वाले लोग हैं, हमें पता है कि आज ये जो महामारी आई है इसको रुकाने के लिए दो चीज बहुत प्रगल्भता से काम करते हैं, एक दवा और दूसरी दुआ। दवा से आदमी का शरीर ठीक होता है और दुआ से आदमी की बुद्धि, आदमी का मन और आदमी का चित्त, ये तीनों भी शुद्ध होते हैं। आदमी पैसे से समाधान रहता है ऐसा नहीं, आदमी शरीर से तंदुरुस्त रहे तो ही समाधान रहता है वैसा नहीं। आदमी को समाधान होना चाहिए और उसी के लिए उसको अध्यात्म की जरूरत है। और आज ये जो कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय आज बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। इसके अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में है। कुछ लोग इसको वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, कुछ लोग इसको भागवत संप्रदाय करते हैं, कुछ लोग इसको मानव धर्म कहते हैं और हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग इसको वारकरी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। वारकरी कौन होता है? दो प्रकार के वारकरी होते हैं, जिसके गले में, जिसके कंठ में तुलसी की माला हो, उसके मस्तक पे गोपीचंद हो, बुक्का नाम की चीज हो मस्तक पे धारण करा हुआ हो, एकादशी का व्रत वो करता हो, वो बाह्य अंग से वारकरी हुआ। और अंतरंग से वारकरी कौन होता है? जिसका अंतकरण शुद्ध हो, जिसके अंतकरण में मलिनता न हो, जो शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये सब जिसको साधन चतुष्टमय संपन्न कहते हैं, जो वो जीव प्राप्त करता है। और इसीलिए वारकरी लोग कहते हैं काय करावी साधने फल अवघेची एने। आप कितनी भी साधना करो, आप कितनी भी उपासना करो, वो कमी है। और जब हम देखते हैं इस कोरोना के भाग में, आज वारकरी संप्रदाय की दृष्टिकोण से जो आलंदी के समर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी लिखे ब्रह्म साम्राज्य दीपिका वर्णीयेले गीतेवरी टीका विठोबाचा प्राण सखा ज्ञानोबा माझा, ये जो ज्ञानेश्वरी है नामा मणे श्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञान देवी एक तरी ओवी अनुभवावी, ये जो ज्ञानेश्वरी है, ये ज्ञानेश्वरी के आज वारकरी लोगों ने लाखों पारायण आज कोरोना रुकाने के लिए किए हुए हैं। ऐसा कहते हैं इस दुनिया में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे चार वेद है, चार वेद, लेकिन वारकरी संप्रदाय एक पांचवा वेद कहते हैं, पांचवा वेद जिसका नाम है श्रीमंत जगतगुरु का तुकाराम गाथा। यह गाथे के अभंग ऐसे है, इसमें धर्म है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, श्रद्धा है, उपासना है, भगवत प्राप्ति के साधन है, और अहंकार छोड़ के इस दुनिया में जीने का तरीका तुकाराम गाथे में कहा है। इसीलिए श्रीमंत जगतगुरु तुकोबराय के गाथा के आज महाराष्ट्र में लाखों पारायण हो रहे हैं, लाखों पारायण। और इस पारायण के माध्यम से, ज्ञानेश्वरी के माध्यम से, और एक है जिसको प्रस्थान त्रयी के माध्यम से तीसरा ग्रंथ कहते हैं, जो मूल भागवत है, मूल भागवत जिसके 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, वो भागवत के एकादश स्कंद का निरूपण पैठण के एकनाथ महाराज ने किया। और संपूर्ण भागवत का जो सार है उन्होंने इस एकनाथी भागवत में लाने का प्रयास किया। और ये एकनाथी भागवत के भी आज महाराष्ट्र में अनेक वारकरी बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम से प्रार्थना करके भगवान पंडरीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान कि आपने कहा है दुर्लभम त्रयमेव वेतद मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्यत्वम दुर्लभ है, मानव देह कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, एकाध बार साधु की संगत मिल सकती है, एकाध बार मोक्ष मिल सकता है, लेकिन मानव जन्म मिलना बड़ा कठिन है। हा दुर्लभ नर देह जाना रे, हा नर हा दुर्लभ नर देह जाना, ऐसा हा दुर्लभ नर देह आज हमको प्राप्त हुआ है। अनेक जन्म की पुण्याई से आज हमको ये नर देह प्राप्त हुआ है। भगवान ये कोरोना जैसी महामारी ने आज हमारा अंत न हो, क्यों? इस पृथ्वी पर वृक्षाचे ही पान हले जाची सत्ता राहिली अहंता मग कोठे, मसी पत्र ते केवड़े रावो चालवी आपुल्या पाड़े, चाले हे शरीर कोणाचिया सत्ते कोण बोलवी तो हरिवीण। अरे भगवान, इस पृथ्वी पर का एक पत्ते का दल भी आपके हुकूमत के सिवाय नहीं चलता है, तो ये महामारी कहां से आई है? हम आपके चरणों में विनंती करते हैं कि आप इस महामारी का आपकी कृपा से जल्दी अंत हो। वारकरी संप्रदाय के साधु संत महात्मा योगी ये सब लोगों ने आज अनेक दृष्टिकोण से व्रत किया है। आज कुछ कुछ लोगों ने 7 दिन रामकृष्ण हरि का पूरा भजन आरंभ किया है। कुछ कुछ लोगों के मठों में रामकृष्ण हरि विठ्ठल केशवा इस नाम का 24 घंटे आज नामस्मरण चालू है। कुछ कुछ लोगों के मठ में केशवा माधवा विठ्ठला मुकुंदा मुरारी राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि इस नाम का जप है। किस मठ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज प्रत्येक जीव आज अपनी प्रयास से जिसका साधु संतों ने अपने को उपदेश किया है और जो पुरातन कालों से जो महामंत्र चालू है उसका जप करके आज इस कोरोना पर मात करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सही बोले तो कुछ साधु ऐसे हैं, वारकरी संप्रदाय में कुछ साधु ऐसे हैं कि जिन्होंने 21 दिन तक सिर्फ जल पी के अनुष्ठान किया है। कुछ लोग चातुर्मास के बहाने पहले दिन से फलाहार यानी सिर्फ फल, यानी वैसे साबूदाना भगर खिचड़ी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फल, ऐसा कुछ लोगों ने अनुष्ठान पकड़ा है। कुछ लोग कोरोना के महामारी के लिए सिर्फ दुग्ध आहार किया है, जैसे अपने ग्रंथों में कहा है श्रम और दम, एक इंद्रियों पे विजय और दूसरा मन पे विजय। इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के लिए भी साधना करना पड़ता है और ये जो मन है, हे मन कैसे केवड़े ऐसे पाहो मढ़ो तरी न सापड़े, येरवी राटावया थोड़े त्रैलोक्य जया चंचलम ही मन कृष्ण मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। ऐसा ये जो मन है मन, इस मन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए अपने को साधना करना पड़ता है। और इस कोरोना के माध्यम से आज आदमी घर में है, सुरक्षित है और लोग अपने अनुष्ठानों का बहुत बड़ा फायदा ले रहे हैं। कुछ लोग आज पंढरपुर के ब्रह्म वृंद आज रुद्रयाग कर रहे हैं, आज रुद्र कर रहे हैं, कुछ लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय के पूर्ण लोग आज अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेके नाम चिंतन कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग जिसको हम लोग अजपा जप कहते हैं, जिस जो 21,600 कहते हैं, वो 21,600 का रोज सुबह 3 बजे उठकर सुबह 7 बजे तक रोज अनुष्ठान कर रहे हैं, रोज अनुष्ठान कर रहे हैं। हमें विश्वास है हर चीज व्यर्थ जाएंगे लेकिन भगवत नाम स्मरण भगवत नाम चिंतन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो संतों ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आप देखिए ज्ञानेश्वर महाराज के जो पिता थे जिनका नाम था विठ्ठल पंत, विठ्ठल पंत के धर्म, विठ्ठल पंत ने तो संन्यास दीक्षा ली हुई थी, उनके धर्म पत्नी आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन लेके वहां पर एक बड़ा पीपल का झाड़ था, उसके दर्शन लेके उसको जब प्रदक्षिणा कर रहे थे तो ये रामानंद नाम के स्वामी वहां पर आए और रामानंद स्वामी जी ने कहा कि पुत्रवान भव, माताजी के मुख से माताजी के आंखों से 2 आश्रु निकले और स्वामी जी के चरणों पे गिरे। और स्वामी जी ने कहा बेटा रोने के लिए क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पति ने संन्यास दीक्षा ली है और आप तो कहते हैं कि पुत्रवान भव। उन्होंने कहा कि मेरा शब्द सच होगा। एक आध बार हम तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने दिए सो लफ्ज नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन साधु ने दिए सो शब्द, संतों ने दिए सो शब्द कभी भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जयाचे नि वाक्य उजिवड़े जाहले चित्त निधड़े ब्रह्माचे नि पाड़े निशंकु होय। और इस तरह मानव को आशीर्वाद भी बहुत महत्व का है, इसीलिए साधु कहते हैं 1,00,000 रुपए से एक काम होगा, 1,00,000 रुपए से एक काम होगा, लेकिन 1 आशीर्वाद से 1,00,000 काम बनेंगे। इसीलिए जीवन में साधु की संगत, संतों की संगत, योगियों की संगत, महापुरुषों की संगत, धर्म ग्रंथों की संगत और कलयुग में कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजदो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवत नामस्मरण, इसीलिए वारकरी संप्रदाय में कीर्तन को बड़ा महत्व है। ये कीर्तन खाली टाइम देख के करने का कीर्तन नहीं है, कीर्तन ये एक अवस्था है, अवस्था अवस्था। कीर्तनी चांग होय अंग हरि रूप, ऐसा कहते हैं वेणीराम भगवान। जब नामस्मरण मानव जीव संत लोग कहते हैं तो कैसा करते हैं, वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसती क्वचिच्च विलज्य उद्गा यथिन्द्रत्य तेच मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। इतना भगवत नामस्मरण में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। तो हमें विश्वास है कोरोना नाम के महामारी को अगर रोकना है तो आज जग भर में हर कोई अपने अपने संप्रदाय से, अपने अपने माध्यम से आज भगवत नामस्मरण से इस कोरोना को रोकने का आज प्रयत्न कर रहा है। आज विश्व शांति के नाम से लोग अपने घर में शांति की कामना करते हैं। पहले तो घर की शांति से भी अपने घर, अपने शरीर में शांति की आवश्यकता है। और जो आदमी शरीर में शांति कमाता है वो घर में शांति रखता है, और जो घर में शांति रखता है वो गांव में शांति रखता है, जो गांव में शांति रखता है वो विश्व में शांति रखता है। और आदमी को जिंदगी में पैसे से बड़ा सुख कौन देता है, तो वो शांति देती है, शांति। इसीलिए वेद में ऐसा कहा है, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षघौ शान्तिः पृथ्वी शान्ति शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वघौ शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। ओम शांति शांति शांतिः। दुनिया में अगर सबसे बड़ा क्या है तो शांति है। और आज अगर आप देखेंगे तो ओम शांति के माध्यम से खाली महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, तो विश्व की शांति, ऐसा कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद भद्रं तन्न आसुव। जब ऐसा कहते हैं कि विश्व शांति वाले उनकी जो प्रार्थना है वो ऐसा कहते हैं, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हे भगवान तुम मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई भारत में है या कोई अमेरिका में है या कोई लंदन में, ऐसा नहीं तो दुनिया का कोई भी आदमी जो दुखित है, जो पीड़ित है, उसके आश्रु पूछने की, ये भगवान तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे बल दे और उसके जीवन में शांति प्रदान करे। ऐसी ओम शांति के माध्यम से जो कार्य चल रहा है उस कार्य को मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूं, नतमस्तक होता हूं और ऐसी ही कामना, शुभकामना करता हूं कि इनकी माध्यम से और आध्यात्मिक क्षेत्र भूतलों पर जितने भी काम कर रहे हैं, आज हमारा वारकरी संप्रदाय भी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, इन सभी की माध्यम से दुनिया में शांति प्राप्त हो, इतनी प्रार्थना करके मैं मेरे प्रवचन को पूर्ण विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।
महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटका का सबसे प्राचीन आश्रम है बेली मठ, जिसका 600 साल पुराना इतिहास है। यह मठ समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सेवा करता है। वर्तमान समय इस मठ के प्रमुख हैं स्वामी श्री 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 शिवरुद्र महास्वामी जी, आपका ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्नेही हैं और सहयोगी हैं। आदर सहित मैं अनुरोध करती हूँ स्वामी जी से कि आप अपने महान विचारों से हमें अवगत कराएं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस साल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पुण्य स्थान पर होने वाली प्रोग्राम अभी व्यस्त होने के कारण ई कॉन्फ्रेंस रूप में अभी संदेश देने का अवसर हमको दादाजी ने प्रदान किया है हमको। देखिए, हर आदमी उसका उत्तेजन ये स्पिरिचुअल रूप में ही पाना बहुत अवश्य होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः यतयः शुद्ध सत्वाः इति मुनि ने कहा था। वेदांत और विज्ञान, वेदांत अंतरंग का प्रकाश है, विज्ञान बहिरंग का आचरण है, और ज्ञान और आचरणों का एक कहनी और कथनी का जो मिश्रण है उसको अंतसत्व का रूप में हम धारण करना चाहिए। सारी दुनिया ईश्वर की रचयिता, सारी दुनिया को रचयिता ईश्वर है, हम सबको आशीर्वाद करके इधर भेजा है, परंतु अज्ञान रूप में हम लोग क्या कर रहा है, आपस में वैर रखकर हम सब ये अलग अलग होने का प्रोग्राम हो रहा है, वही अंतरंग का एक महामारी रोग है जो अभी विश्व भर फैलाकर हमको तापत्रय दिलाने वाला जो कोरोना महामारी है, ये अंतरंग का अज्ञान और अहंकार उसका सूक्ष्म स्वरूप है। इस सूक्ष्म स्वरूप को हम संपूर्ण रूप से उसको बाहर करना चाहिए, उसके अंदर ये हमारा मन का अज्ञान को मिटाकर ज्ञान ज्योति का दीप जलाना बहुत आवश्यक है। ये युगांत हो रहा है, कलयुग का अंत होने का समय में जो दादाजी ने हमको उपदेश किया, आने वाला सत्य युग में हम सब सत्य को पालन करके हम ज्योति जगाकर चलने का हमारा चिंतन रखना चाहिए, हम योगी बनना चाहिए। योग माने क्रिया और ज्ञान दोनों का संगम ही योग है, उसको अच्छी तरह से विश्व में फैलाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेकर दादाजी और माताजी, दादी जी सब मिलकर हमको उसके प्रयत्न से, उन्हों का प्रयत्न से हमको बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन देने का अवसर है। हम पुण्य क्षेत्र माउंट आबू को कई बार आ चुका हूं, अभी माताजी का दर्शन बेंगलुरु आने का समय में हमको भी हुआ था। सारी दुनिया उसके आशीर्वाद से, उसकी व्यवस्था से हम जीने का प्रबंध करना हम सीखना चाहिए। उस कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से, देखिए अभी ये कोरोना महामारी के भय में हम लोग अभी एकांत में बैठने का अवकाश मिला है, इस अवकाश को सदुपयोग करना है। क्या हमको भगवान किसके लिए भेजा, हमको क्या सिखाना जरूर है, उसके बारे में चिंतन करना, वही है हम विश्व भर सोचना चाहिए, अंतर्मुख होकर सोचना चाहिए, हम स्वयं पूर्ण व्यवस्था को अंतरंग बहिरंग में आचरण करने का और शक्ति को अपनाना चाहिए। उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान फैलाने का प्रोग्राम सारी दुनिया के अंदर इस महामारी का व्यवस्था रखकर अभी ई रूप में अंतर्जाल के रूप में अभी जो कर रहा है वो हर आदमी का मन उसको ये प्रज्वलित दीप के तरह अज्ञान को मिटाकर ज्ञान स्वरूपी होने का एक बहुत बड़ा अवसर है। उस अवसर में आप सबको अंतर्जाल में देखने का और सुनने का अवकाश हमको भी मिला है। उस समय में हम भी इधर बैठकर आप सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन में भी लेने को तैयार हूं। ये ऐसा ये दूर दूर होते हुए भी ये आपस में ये बैठकर अंतर्जाल के रूप में ये मन समन्वय करने का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसको बहुत बड़ा विद्वान अनुभवी शास्त्रवेत्ता महायोगी लोगों का उपदेश हमको अनायास रूपेण हमको अंतर्जाल में मिलने का एक अवसर है। उसको हम सब मिलकर उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करना है, उसको कामयाबी होने का एक प्रयत्न करना है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ऐसा मार्ग में हम ये अज्ञान को अंधकार को मिटाकर हम ज्ञान स्वरूपी भगवान को आवाहन करने का ये अवसर हम सबको मिला है। ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನದ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ದಾದೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಶತ ಶತ ನಮನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಮೇರಾ ಈ ವಾಕ್ಯಂಕೋ ಹಮ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖಿನೋ ಭವತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ತತ್ಸತ್.
ಹಮ್ ಶುಕ್ರ ಗುಜಾರ್ ಹೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ, ಆಪ್ನೆ ಅಪ್ನಾ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಭಾವ ಹಮ್ಸೆ ಸಾಂಝಾ ಕಿಯೇ. ಸಮಾಜ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೋಗದಾನ್ ದೇನಾ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಾಹಿಯೆ ವಿಲ್ ಪಾವರ್, ಔರ್ ವಿಲ್ ಪಾವರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೇ ರಾಜಯೋಗ ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ. ಅಬ್ ರಾಜಯೋಗ ಧ್ಯಾನ್ ಕಿ ವಿಧಿ ಬತಾನೆ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಜುಡ್ ರಹಿ ಹೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವಿಂಗ್ ಕಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬಹನ್. ಆಪ್ ಚಾರ್ ದಶಕೋ ಸೆ ಯುಪಿ ಕೆ ಕೈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸಮರ್ಪಿತ ರೂಪ ಸೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾಯ ದೇ ರಹಿ ಹೇ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಆಪ್ ಬರೇಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಿ ಸಂಚಾಲಿಕಾ ಹೇ. ಆಪ್ ಹಮೆ ರಾಜಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾ ಬಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಾಯೆಂಗಿ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಪರಮ ಪಿತಾ ಶಿವ ಕಿ ಪ್ರಿಯ ಸಂತಾನ, ಆಜ್ ಕಿ ಇಸಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಏಕತ್ರಿತ ಹುಯೆ ಹೇ ಔರ್ ಹಮಾರಿ ಆದರಣೀಯ ಮನೋರಮಾ ದೀದಿ ಜೀ एवं सभी संत ग्रंथ महात्माएं महानुभाव और इसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम मिल रहे हैं. और आज के हमारे इस धार्मिक सम्मेलन का विषय है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए धर्म नेताओं की भूमिका. तो धर्म नेताएं तो आत्मनिर्भर है ही, अब उसको और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका है, उसके लिए हम सबको अपनी आत्मा को पहले सशक्त बनाना होगा आध्यात्मिक गुरु से. परमपिता परमात्मा की याद से जो आत्मा में आध्यात्मिक गुण आते हैं तो आत्मा पहले स्वयं स्वनिर्भर बनती है. जब आत्मा सशक्त हो जाती है तो हम भारत को सशक्त बनाने की स्वनिर्भर बनाने की संकल्प करके उसको बना सकते हैं. तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं और परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन का संबंध जोड़ने का संकल्प करते हैं. तो चलिए अभी हम सब इन पांच तत्वों से पार थोड़ी देर के लिए अपने मन को सब तरफ से एकाग्र करेंगे और स्थिर करेंगे. हमारे शरीर की एनर्जी ऊर्जा धीरे धीरे पैरों से निकलकर और वो उस आत्मा के पास तक पहुंच रही है। दोनों हाथों से ये एनर्जी निकलकर ऊपर की ओर जा रही है और महसूस कीजिए कि मैं आत्मा एकदम रिलैक्स है। शरीर के भार से आला एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, एक प्रकाश हूँ। इस देह और दुनिया से उभरा हूँ। अब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। इस शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इस मंदिर में निराजमान एक मूर्ति के समान अव्यक्त मूर्त हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। अपने स्वरूप में स्थित होकर अब हम चलते हुए बुद्धि योग की यात्रा पर अपने पिता परमात्मा के पास। तो चलिए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि अब हम रूहानी यात्रा। तो वास्तव में मैं आत्मा इस आवाज की दुनिया से दूर सूर्य चांद और तारागण से पार साकार लोक से भी पार अखंड ज्योति ब्रह्म मैत्र परम धाम रमलो चारो लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा उस ज्योति के देश की निवासी इन पांच तत्वों से पार इस घर में सर्वत्र शांति है। कितनी अथाह पवित्रता है, कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। इस ज्योति के लोक में मेरे प्यारे शिव बाबा निवास करते हैं, जिनका रूप ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। परंतु रूप में बिंदु होते हुए भी घोड़ों में सिंधु के समान है। यानी पिता सारे विश्व का कल्याण करने वाले, इसलिए आपका गुण वचन कल्याणकारी शिव बाबा है। मेरे बाबा अथा गुरु के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, शांति के सागर है, दुखहर्ता सुख देने वाले। यानी शिव बाबा से फाउंटेन की तरह से सर्व गुणों की सर्व शक्तियों की किरणें निकल कर मुझ आत्मा में भर रही और ये शक्तियां ये किरणें धीरे धीरे चारों ओर के वातावरण में फैल रही है। चारों ओर का वातावरण शांत होता जा रहा है। कीजिए हम एकदम एकाग हैं और मैं और मेरा बाबा तीसरा कोई नहीं, तो परम पिता परमात्मा के प्यार में समा जाइए। खो जाए या उन्हें ले जाए। आप प्रभु प्रेम का आनंद अनुभव कर परमात्मा मिलन कर अब मैं आत्मा पुनः धीरे धीरे भरकुटे सिंहासन पर विराजमान हो गई। करो चित्र पर कर्म करने के लिए जा रहे हो। ओ शांति शांति शांति।
बहुत बहुत आभार बीके पार्वती बहन का राजयोग की साधना और दिव्य अनुभूतियां कराने के लिए। अब अंत में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिलीजियस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर राजयोगी बीके नारायण भाई। आपसे अनुरोध है कि आप विशिष्ट वक्ताओं का और परोक्ष एवं अपरोक्ष सहयोग देने वाले सभी भाई बहनों का तह दिल से धन्यवाद करें।
ओम शांति। धार्मिक प्रभाग के द्वारा आयोजित ई सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी महामंडलेश्वर संत विद्वान प्रभाग के वक्ता हमारी प्रिय दादी जी जिन्होंने अपने अमूल्य अनुभवों का और समय का योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, धार्मिक प्रभाग की ओर से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और साथ में ही जैसे इस सम्मेलन का विषय रखा गया आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वैश्विक उत्थान, हम देखते हैं विश्व के अंदर समय प्रति समय अनेक संकट पैदा होते रहते हैं, प्राकृतिक संकट, आर्थिक संकट, रोजगार के संकट, ऐसी कई समस्याएं पैदा होती भी रहती है और उसका सामना सभी मिलकर के करते भी हैं और कुछ समय के बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन फिर भी एक समस्याएं जो सारे विश्व के अंदर मानव समुदाय में भरी हुई है वो है अपवित्रता, अशांति, क्रोध, भय, डर, चिंता। ये कुछ ऐसे मानसिक संकट है जिसके कारण भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मानव जीवन का संपूर्ण सुख नहीं ले पा रहा है। भौतिक संकट से दूर करने के लिए सरकारें समय प्रति समय प्रयास करती रहती है जिससे भौतिक संकट को खत्म भी किया जाता है, जैसे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, आर्थिक पैकेज की घोषणा करना, इन सब सरकारी प्रयासों से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो हुई है, फिर भी इसके बावजूद जीवन की निराशा तनाव दूर नहीं हो पाई है। ये एक ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं खुद की है। जब तक हम इन समस्याओं पर हम विराम नहीं लगाएंगे तब तक जीवन का सुख शांति और संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। अब इन्हीं समस्याओं का सामना करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो किस तरह से हम इन समस्या का सामना कर सकते हैं? आध्यात्मिकता के द्वारा, साइलेंस शक्ति के द्वारा ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आध्यात्मिकता अर्थात स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है स्पिरिट इन रियलिटी। जब हम अपने स्वयं के सत्य को जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो स्वतः ही हमारी आंतरिक प्यास, आंतरिक कमी, आंतरिक समस्याएं खत्म हो जाती है। जैसे भौतिक शरीर को अगर हम अच्छा पौष्टिक आहार दें तो शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, इसी तरह से आत्मा की एनर्जी वो हमारे श्रेष्ठ विचार है और श्रेष्ठ विचार आध्यात्मिकता से मिलते हैं। तो जब हमें स्वयं का परिचय मिल जाता है, उस परमात्म शक्ति सर्वोच्च शक्ति का परिचय मिल जाता है और उनसे हमारा मानसिक संबंध स्थापित हो जाता है, परमात्मा शांति सुख आनंद का सागर है। लेकिन उसको हम कैसे अनुभव करें, कैसे प्राप्त करें, ये आध्यात्मिकता सिखलाती है। तो आध्यात्मिकता के द्वारा इन दोनों शक्तियों का परिचय और अनुभव प्राप्त करके हम अपनी आंतरिक शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए ही जो वर्तमान समय में एक संकट चल रहा है, जो आप सब अवगत है, कोरोना वायरस के कारण अनेक मानव समुदाय इससे पीड़ित हो रहा है और इस पीड़ा को दूर करने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार 24 घंटे पूरे विश्व में योग की साधना कर रही है। इस योग की साधना के द्वारा विश्व के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का रूपांतरण करके कैसे वातावरण को शक्तिशाली पवित्र बनाया जाए, इसमें ये ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन लगे हुए हैं। और साथ में ही मैं अपना कंट्रीब्यूशन सारे विश्व की आत्माओं के सहयोग के लिए 8 घंटा प्रतिदिन योग साधना के द्वारा बैठकर कि मानव समुदाय की कष्ट पीड़ाएं कम हो, इसके लिए ये मैं पर्सनल योगदान दे रहा हूं। इसी तरह से मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जो परमात्मा का इस समय कार्य चल रहा है, उस परमात्म शक्ति को पहचान कर अगर हम अपना मानसिक संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं तो परमात्मा से प्राप्त वो शक्तियां, वो गुण योग के माध्यम से सारे विश्व में उत्तरंगे को के रूप में फैलने लगती है, जिससे सारा विश्व सुख शांतिमय बन जाता है। और यही बात गीता में बताई गई कि जो ज्ञानी और योगी है वो आत्माएं ही परमात्मा को प्रिय है और ऐसी आत्माएं विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होती है। तो इस तरह से हम अपना मानसिक संबंध परमात्मा से जोड़कर मानव जीवन को एक सही दिशा देने में और इस समस्या का सदाकाल के लिए समाधान करने में इस रूप से हम एक बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। ओम शांति।
हार्दिक धन्यवाद नारायण भाई जी का सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आप सभी का आज के वैलिडिक्टरी सेशन समापन सत्र में शामिल होने के लिए बहुत विशेष धन्यवाद। इन दो दिनों की यात्रा का हिस्सा होने के लिए स्नेहपूर्वक अंतःकरण सहित आभार व्यक्त करते हैं आप सभी धर्म प्रेमियों का, प्रभु प्रेमियों का। हमारी यात्रा यहाँ नहीं रुकती। हम सभी जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के मिशन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजयोग उसके लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मैं आप सभी से, प्रिय प्रतिभागियों से कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करती हूँ bkreligiouswing@gmail.com पर। आप और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति।